గురవే గౌరచంద్రాయ సరాధికాయ సదాయ నారాయణ భక్తాయ సదభక్తాయ నమో వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాశ్రయేభ్యః చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబలినాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యనామ్నే గౌరవ్రజంతమేతమపేతృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాత్రేకి సన్మయతయాగర్వోపరితరం हम लोग श्रीमद्भागवत से कथा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। महाराज परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं और वितरागी परम भक्त रति सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर दे रहे प्रश्न करते जा रहे हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। संक्षेप में हम लोगों ने ये दो चार घंटे की बात नहीं कुछ दिन एक महीने कम से कम श्रीमद्भागवत का प्रवचन हो तो कुछ हम लोग एक महीना सात दिन में नहीं 14 दिन में भी नहीं एक महीने में और जो निरंतर पाठ होता है किसी रसिक रूप से सब समय वो सर्वोत्तम एक महीने वाला मध्यम और सात दिन वाला जो प्रवचन होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है वो उतना अच्छा है वो सबसे कम हो चुका है। तो हम लोग को ये चार दिन में और वो भी एक घंटा दो अढ़ाई सवा घंटा कोई भागवत नहीं हुए तभी हम लोग संक्षेप में उसे बदलाने की चेष्टा की। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो पुत्र से धन से संपत्ति से कोई भी विश्व में सुखी नहीं रह सकता बिना भगवत भजन के उनकी कृपा से कोई भी सुखी नहीं रह सकता। एक राजा थे चित्रकेतु महाराज धन धान्य के तुल्य थे बेटा नहीं सोचा गया बेटा नहीं मेरे से जन्म बेकार का हमारा पिंड कौन देगा हमारा संस्कार कौन करेगा और हमारी धन संपत्ति किसको मैं दे जाऊंगा। वे लोग बड़े पापी हैं जिनको पुत्र नहीं होता सोच रहे हैं उनको भगवान ने पुत्र नहीं दिया संतान नहीं बड़े और उसी समय के दिन पर्वत महाराज पर्वत गोस्वामी जिनकी बुद्धि और भक्ति पर्वत के समान है ऐसे एक महर्षि अनुभवी उनके पास गया। अभी शुभारंभ ब्रह्मचारी जी बहुत संक्षेप में 10 मिनट में 15 मिनट में इस कथा का बदलाएंगे बहुत संक्षेप में केवल उपदेश
तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी को मेरा यथायुक्त प्रणाम स्वीकार। अभी अभी तुम आराध्य के आज्ञा भी है, चित्त के तुम महाराज उनके दरबार में परम महाराज भी पहुंचे। चित्र के तुम महाराज कितने बड़े राजा थे, भारतवर्ष के एक माने के भी बहुत बड़े राजा है, जिनके लाखों पत्नियां हैं, परंतु बेटों बाद एक ही संतान उन्हें प्राप्त नहीं, इसलिए सब प्रकार से संपन्न होते हुए दुखी। जब ऋषि उनके राज दरबार में पहुंचे, उनका आदर सत्कार हुआ, उन्होंने पूछा आप सब प्रकार से कुशल तो हैं, किसी प्रकार कोई दुख कष्ट तो नहीं? सब राजा ने अपने दुख की बात सुनाई, हम सब प्रकार से संपन्न और सुखी होते हुए एक विषय में देखी, जो हमें एक भी संतान नहीं, इसके लिए हमने कितने विवाह किया, इसकी कोई ठिकाना नहीं, पर तो एक भी संतान नहीं मिला, मुझे इसका दुख। उन्होंने बहुत समझाया, ऋषि ने प्रयास भी की, परंतु राजा को प्रबोध नहीं हुआ। बालक के लिए आदर की संतान किसी भी तरह से मिल जाए, तो बोले अच्छा एक फल मैं देता हूं, इसी को आप अपने पत्नी को खिलाइए, किसी को भी जिसको खिलाएंगे उसको सब गुण संपन्न, ये घर से शोक पर बालक को। इतना कह करके ऋषि तो चले गए, उन्होंने उस फल को खिलाया और दैव क्रम से एक सर्वगुण संपन्न बड़ा सुंदर एक बालक हुआ। अब बालक के होते ही राजा इस प्रकार बालक के मोहजाल में फंस गए कि दिवारात्र उस बालक को लेकर के और उस रानी के साथ में रहे। राजदरबार में क्या हो रहा है और जितने रानियां हैं देशर हैं उनके प्रति कोई दृष्टि कोई भावना नहीं है, सभी को भूल गए, बालक के स्नेह प्यार में डूबे रहे। ऐसे जब देश चला, चार पांच वर्ष का वो बालक हो गया, बड़ा सुंदर बालक है, राजा की उसी में डूबे हुए। परंतु एक कम जो रानियां, एक लाख रानियां थी देश, एक दिन विचार करने लगी कि जब से ये बालक हुआ है तब से हम लोगों का दुख का कारण हुआ कि राजा हम लोगों को ना तो प्यार करते हैं, ना हमें कभी कपड़े के लिए भी पूछते हैं, कभी पूछते भी नहीं, ना प्यार करते, इसलिए हम लोगों के सुख में बाधा दुख का कारण यही बालक। इस बालक को हटा दिया जाए तो फिर से हम लोगों को सुख मिल जाएगा। इस प्रकार मंत्रणा करती हुई स्त्रियों ने, एक दिन वह बालक सोया हुआ था, उनमें से एक ने कालकूट बीज ले जाकर के उसके मुंह में दे दिया। देते ही बालक की आंखें तो पलट गई, एकदम सारा शरीर काला पड़ गया, प्राण तो सही हो गया। बहुत देर हो गया, अभी तक बालक उठाई नहीं, तो ये देख करके उनकी माता ने कहा दादी से, उसकी देवता अभी तक क्यों सोया हुआ है, उसको जगाओ। तो दादी जगाने गई तो देखा कि अब बालक है ही नहीं,
मर गया,
बालक चला गया है, मर गया है। वह देख करके तो वो बड़े जोर से चिल्ला करके रोने लगी, उसके रोने की आवाज सुनकर के उस बालक की माता दौड़ करके आई और ऐसी स्थिति देख करके पछाड़ खा करके गिरी उस बालक के ऊपर में और बड़े जोर जोर से रोने। इस प्रकार राजा को खबर पहुंचा तो राजा तो राय दरबार में ही वहीं पर गिर पड़े, बड़े मुश्किल से लोगों ने पकड़ करके लाया और आकर के वहीं पर गिरे और रोते रहे। और जितनी रानियां थी देश और रो रही है, राजभवन केवल रोने की धूम मचा है, सभी लोग रो रहे हैं उस बालक के शोक में। एक बीच में श्री नारद जी और
अंगिरा
अंगिरा ऋषि दोनों वहां उपस्थित, बड़े मुश्किल से जब उनके अंदर में प्रवेश किया और राजा तो अब कहां जाए, दोनों के पैर पकड़ करके बड़े जोर से रोने लगे कि महाराज जब मेरा बालक नहीं था तो मैं सुखी था, आज बालक हो करके ये बालक चला गया, इसके लिए इतना निवारण दुख जो सहा नहीं जाता है। तो बड़े व्यकुल होकर के रोने लगे। उस समय ऋषि बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, उस बालक को सब सपाया, अरे बालक कैसे सो रहा है, अरे उठ जा, तुम्हारे लिए सब लोग रो रहे हैं, दुखी है, तू कैसे उठो उठो, हाथ थप थपा दो। इतने में बालक ये उठा, उठ करके बैठ गया, आंख मलते हुए सबकी ओर देखा, बोले आप लोग कैसे रो रहे हैं, क्या बात। सभी लोग बड़े दुखी थे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब अपने पिता माता से कहा, बोले आप लोग क्यों रो रहे हैं, मैं जहां चला गया वहां अच्छी जगह में गया, अब मैं सुख से हूं। आप लोग हमारे पिता माता, अरे हम भी तो आपके पिता माता कई बार बन चुके हैं। इस आत्मा जो है, यह आत्मा न किसी के माता न किसी के पिता बनता है, वह तो अजर अमर है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं। फिर भी शरीर के साथ में होने के कारण कर्मों के द्वारा यह मानव जीवन मिलता है, चाहे शरीरों में जन्म होता है, फिर कर्मों को लेकर के चला जाता है। इसलिए बार बार जन्म और मृत्यु, परंतु आत्मा जो है इस चेतन वस्तु के शरीर से पृथक, इसके लिए शुद्ध वह कहना तो व्यर्थ देगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करते, मैं जहां गया हूं वहां सुख से हूं। एक प्रकार कहते हुए बालक फिर से सो गया, उसके शरीर में से आत्मा निकल गई और वह चला गया। चले जाने से अब राजा को मोह दूर हुआ। राजा अब ऋषि के चरणों में गिर पड़े, बोले कि हे महाराज अब मेरा मोह दूर हुआ है, आप आसक्ति हमारी समाप्त है, हमें आप कृपया ऐसा उपदेश दें कि जिससे हमारा उद्धार हो। तब से नारद महाराज ने उनको मंत्र दान किया, बोले कि हे महाराज आप चिंता नहीं करें, इस पार्थिव वस्तु के द्वारा, पुत्र परिवार धन दौलत विषय सुख के द्वारा, विषय संपत्ति के द्वारा कदापि कोई शांति लाभ नहीं कर सकता, न कोई दुखी होता है, किसी के पास अपार धन होता है और किसी के पास कम है, तो धन की प्रचुरता होने से सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ये कदापि नहीं, ये संभव नहीं। धन की प्रचुरता हो सकती है, धन दौलत बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कमा सकते हैं, परंतु उसके द्वारा शांति या आनंद प्रेम नहीं मिल सकता है, वह तो मिलेगा एकमात्र आनंदमय है भगवान श्री कृष्ण, देही आनंदमय है, उनको यदि कोई प्राप्त कर ले तब वे सुखी होते हैं, शांति लाभ करते हैं। एक प्रकार की नारद जी महाराज जी ने चित्र के तो महाराज जी को उपदेश दिया, मंत्र दान किया, और उन्हें रानिया भी जितने भी सब जने नारद जी के पैर पकड़ करके रोने लगे कि हमने बहुत भारी गलती की, जो हमारी गलती की वजह से ये बालक चला गया, पर हमने ऐसे ही सोचा, इसलिए हमें क्षमा करें, हमारा उद्धार। तब नारद जी बड़े दयालु उन सबको मंत्र दिया और सभी लोग कृष्ण का भजन करने लगी, प्रवेश किया। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज मंत्र जप के प्रभाव से गंधर्वों की गति प्राप्त करके समस्त वायुमंडल में आकाश मंडल में घूमते फिरते थे। एक दिन दैव श्रम से कैलाश में पहुंचे शिव जी के वहां, तो महादेव जी उस समय बैठे हुए थे, तो उनके गोदी में पार्वती जी बैठी थी, पर ऋषियों की सभा थी, ऋषियों की सभा में वे हरि कथा सुना रहे। ऐसे समय में चित्रकेतु महाराज पहुंचे, जो कि पीछे उन्होंने शंकर संत से भी मंत्र लिया था, इसलिए गुरु भाई जैसे लगते हैं शिव जी, तो इसलिए गुरु भाई के रूप में उनसे कहा, हे महादेव जी आप धर्म के आचार्य हैं, गुरु हैं, सत्य भगवान के स्वरूप हैं, आप आपके लिए ना तो कोई दोष लगता है ना कोई विडंबना है, परंतु संसार की दृष्टि में लोग संसारी लोग ऐसे ही जो है आचरण करेंगे, इसलिए ये अच्छा नहीं कि अपने पत्नी को बाएं तरफ अपने गोदी में बैठा करके आप सभा में प्रवचन करें। इस तरह की बात सुनते ही देवी को बड़ा क्रोध हुआ, बोले जाना अच्छा तुम ही एकमात्र उपदेश देने वाला आ गया, देवादेव महादेव तो उपदेश सुना रहे, जा असुर कुल में जाकर जगह मुक्त अविचार के। उस समय चित्र के तुम महाराज हंसने लगे, हंस के लिए उनके अभिशाप को मस्तक पर ग्रहण कर दिया कि कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्तों के लिए नारायण पराशर के कुतंत्र न दिख्य, जो लोग भगवान के चरण कमल को आश्रय किए हुए हैं उनको कहीं किसी प्रकार कोई डर नहीं होता, न किसी प्रकार भय। सर्गात वर्ग नरकेश्वरी तुल्लार्थ वर्षीय, स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मुक्ति और नरक सभी जगह उनको समान बराबर जैसे अनुभव होता है, उनको कोई परवाह नहीं। वे चाहते हैं कि हमारा जन्म ऐसी जगह हो प्रभु की भक्ति हमें मिले और साधु संतों का संग मिले, इसलिए वे कभी परवाह नहीं करते। तो हंसते हुए चले तो उस समय जी ने कहा देखा देवी ये है महान भगवत भक्त, वे चाहते तो उल्टा तुम्हें अभिशाप दे देते, परंतु उन्होंने कोई अभिशाप नहीं दिया, अब तुम्हारी दी हुई अभिशाप को मस्तक पर हंसते हुए ग्रहण कर दिया। वही चित्र के तुम महाराज के जन्म में त्रस्ता ऋषि के पुत्र विक्रासुर होकर के जन्म हुए, जो कि विशाल महान देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि त्रस्ता ऋषि के पुत्र विश्वरूप को मार दिया था, इसलिए विक्रासुर को प्रकट किया, जगजने से प्रकट किए विशाल असुर के रूप में। तो उस समय त्रस्ता ऋषि ने उसे कहा कि तुम्हारे भाई को मारने वाला देवराज इंद्र तुम्हारा शत्रु, अतः उसके साथ विरोध करते हुए उसका संहार, समस्त दैत्य सेना उनके साथ मिल गई, असुर सेनाओं को लेकर के वृत्रासुर ने महाघान और संघार संग्राम किया, देवता लोग मारे मारे भागे, अंत तक ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए और उनसे प्रार्थना की, तो विष्णु ने कहा दधीचि मुनि के अस्त्र से जब अस्थि से यदि वज्र बनाया जाए और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं, बहुत बड़े बलिया है। तो इस प्रकार देवराज इंद्र देवता लोग गए, दधीचि मुनि के अस्थि को मान लिया दान में और मान करके उससे वज्र बनाया, वज्र बना करके फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ कि युद्ध करते करते वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर को ऐसा लगता है कि मानो ये कोई फूल बरसा रहे हैं, उनको कुछ भी परवाह नहीं, और जब हुंकार मार करके त्रिशूल उठाते या गदा मारते तो देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी तक गिर जाते। तो इस तरह से इंद्र के हाथ से वज्र भी गिर पड़ा, कोई बार वज्र को उठाए और मारते रहे परंतु कुछ कारण नहीं बना। उस समय देवराज इंद्र सोचने लगे कि मैं इस वज्र से कैसे मारूं, लज्जा से मारे अब वज्र नहीं उठा रहे, इधर में थोड़े से समय घनपुर युद्ध हो रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा समय मिलना भी बड़ा कठिन काम है, ऐसे बीच में वृत्रासुर ने सोचा कि मैं प्रभु को क्यों नहीं प्रार्थना करूं, इस समय थोड़ा सा समय मिला है मैं प्रभु की प्रार्थना करूं, इस असुर शरीर में साधु संतों का संग नहीं मिल सकता, इसलिए बड़े व्याकुल होकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगी। अहम हरे तप पादई कमूल दासानुदासो भविता भूय मन स्मरे प्राणपति, आपके जड़ों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म ले जहां कहीं मेरा जन्म हो, आपके जो भक्त जन है भक्तों का चंद्र हमें मिलता है और उन भक्तों के साथ में रहकर आपके नामों का आपकी कथाओं का हम श्रवण कीर्तन कर सकें, यही हमें कृपा कर। हमें इस संसार का धाम दौड़ भूत बैठा नहीं चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें मुक्ति चाहिए। यही दे हे प्रभु, जन्म जन्म में आपका विरह हमें अनुभव हो और उस विरह में आपका स्मरण बना रहे, आपकी प्रार्थना बने। अजात पश्चा इव मातरम खजा तन्नम यथा वर्ष तरा सुधार्था प्रिय प्रिय वुषितम विसन्ना मनोर बिंदा सदी फतेता। अजात पश्चा ये छोटे छोटे पक्षी के बच्चे अभी पंख निकले नहीं, माता पिता के लिए तरस रहे हैं, खरना आवाज सुन करके क्यों उठते हैं कि कहीं उसकी माँ आ करके उनको खिलाए, उसके लिए तरसते हैं, उत्कंठा है। फिर प्रभु हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा है, परंतु पक्षी के पंख हो जाने पर वो तो उड़ के चला जाता है। इसलिए कहा कि ये गाय के बछड़ा है, छोटे बछड़े को दिन भर बांध रखा है, गाय चरने को चली जाती है, जब शाम को आती है तो जोर से आवाज लगाती है, डकारती। गाय की आवाज सुन करके बछड़ा और हम्बा रंग करते लिए रस्सी को किसी तरह से खींचता हुआ मैया के पास में जाने को तरसता है, पर खोलने को आता है खोलने को भी नहीं देता है, इतने उसके अंदर उत्कंठा होती है। हे प्रभु, हमारे अंदर भी ऐसी उत्कंठा बने कि आपके प्रति हमारे लालसा प्रार्थना बन जाए। फिर से कहा हे प्रभु प्रिय प्रिय और उचितम विसन्ना, ये प्रिय और प्रियतम है, प्रियतम दूर देश में प्रवास में जाने पर प्रिया जैसे घर में बैठी हुई और दिवारात्र सोचती रहती है, उनके कल्याण की चिंता करती है, कहीं किसी प्रकार कोई अमंगल तो नहीं हो रहा, कहीं किसी प्रकार कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, इस प्रकार चिंता करती है। तो इस प्रकार भेद प्रभु हमारे अंदर ऐसे ही विरह वेदना आपके लिए उत्कंठा ऐसा भाव जागृत हो जो निष्काम निस्वार्थ रूप से अहिंसक भाव से आपके प्रति हमारी भक्ति हो, हमारा प्रेम हो, आपके चरण कमल को हम प्राप्त करें। ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यं संसार जस्ते भ्रमत स्वकर्म हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि जन्म हो जथा तुआ का मकुड़े हूं करके भी जन्म हो जाए तो तुम्हारे जहां भक्त हैं वहां पर हमारा जन्म हो और भक्तों का संग है। इस संसार में कर्मों के द्वारा भ्रमण करके लिए जहां कहीं जन्म हो आपके भक्त जनों का संग हमें मिलता रहे, निरंतर हरी कथा के उत्सव में ही हमारा समय निकल जाए। तुम्हारे माया के द्वारा रहते हुए इस संसार में पुत्र परिवार बंधु बांधव उनके आसक्ति में मोह में इस प्रकार बन करके इस बंधन में नहीं जाऊं, जन्म जन्म में मेरी यही प्रार्थना है। इस प्रकार पितृसूर ने प्रार्थना की और प्रभु के चरणों में आरती निवेदन देवराज एक सुन करके परिचित हो बोले, अरे ऐसे भक्त इसको कैसे मारूं, मैं नहीं मार सकता, वज्र नहीं उठाया। सब ऋषियों ने और वहां के देवताओं ने जो सैन्य के रूप में वहां थे सबने कहा इसको यदि नहीं मारेंगे तो हम लोगों का विजय नहीं हो पाएगा, हम तो सदा ही हारे रहेंगे और कई लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। इतने में पितृसूर ने कहा हे देवराज इंद्र, हमारे लिए जब ये वज्र बना है तो आप इस मुद्दे से उठाइए, युद्ध में हार जीत तो सबको होता ही है, इसलिए आप बच्चे उठाए मुझको मारे, तब तक नहीं उठा रहा था। जब उन्होंने ये लोगों दंड दे करके उठाया और प्रहार किया, इतने में बच्चे उठा करके मांग रहे, और उनको डर था कि ये महान भगवत भक्त है, इनको मार करके इस हत्या का पाप हम कैसे लें, इसलिए डर रहे थे। परंतु मारना ही पड़ा, और बहुत दिनों तक प्रयास करते हुए एक एक करके हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर बिस्तर को उनको निगल गए, फिर उसके गला को काटे, इस तरह से विप्रासुर का वध किया। परंतु देवराजेंद्र को क्या हुआ कि उसको मारने से जो ब्रह्म होता वैष्णव होता पाप थी, तो वो पाप उसके पीछे दौड़ा, तो इतने में मारे मारे भागता हुआ कमल मानव सरोवर में जाकर के कमल के नाल में छिप गया। 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए वहां पर पड़ा रहना पड़ा, क्योंकि पहले देव गुरु बृहस्पति के प्रति उनकी अवज्ञा थी, इस कारण उनको ऐसे प्रायश्चित होना पड़ा कि एक वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, साधु के प्रति अवज्ञा अनादर के कारण देवराज इंद्र को भी ऐसे कष्ट भोग करना पड़ा, 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए रहना पड़ा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जितने भी लक्षण वर्णन किए गए उसमें कहा गया है कि विप्रासुर वधूपेतम, जिसमें विप्रासुर वध उपाख्यान वर्णन, नारायण कवच का वर्णन हो, उस शास्त्र को श्रीमद् भागवत जाने समझे। इस प्रकार विप्रासुर की कथा है, जो चित्रकेतु महाराज विप्रासुर होकर के आए थे और इस शरीर को छोड़ करके भगवान के लोक में गए। जैसे भी हो, कैसे भी स्थिति में हो कि प्रभु की भक्ति करें, भजन करें, संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऐसी ऐसी कथाएं हैं, मैं यहीं पर अपना वक्तव्य रखता हूँ। पंचालोकोपा सिंधु पतितानं पवने वैष्णवे नमो नमः।
आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज का उपाख्यान किया, यह परम सत्य घटना है, बहुत इसलिए संसारी अर्थ के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, पुत्र के द्वारा, कन्या के द्वारा हम लोग सुखी नहीं हुए। ऐसे ऐसे हजारों उपाख्यान हमारे शास्त्रों में सारे हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों को, नारद जैसे भक्त को या और भक्तों को भेजते हैं हम लोगों के ऊपर करुणा करें। हम उनके प्यारे जीव हैं, उनके पुत्र हैं, संतान हैं, हम उनके सेवक हैं, और जिससे कि हमारा कल्याण हो और हम भी भगवान की चरणों की सेवा भाव करके हम सुखी हों, इसलिए भगवान को प्रयत्न करते हैं। कभी कभी स्वयं भी आते हैं, कभी कभी अपने अवतारों को भी भेजते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं। इसलिए गीता में कहा गया परिश्रणाय साधुना धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युग, मैं युग युग में असुरों का दमन कर अपने संतों की रक्षा कर धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आता हूँ। इसलिए कृष्णचंद्र जी का भी अवतार इसीलिए हुआ। धर्म में क्या है, लौकिक धर्म नहीं, आत्मधर्म के लिए हम उनके लिए सेवक हैं। किसी प्रकार से हम भगवान के चरणों में पहुंचे, संसार को छोड़कर, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण होते हुए भी जसोदा के गर्भ में गोकुल में प्रकट हुए। सबसे पहला काम उन्होंने किया तारकुण को पूतना आई मारने की, कंस ने भेजे। ऐसी वो राक्षसी थी जो बच्चों को ऐसे ही चना जैसा चिबा जाती, उसका मांस खाती, उसके रुधिर को पीती और छल बल करके वो कृष्ण को उठा दिया पलने से और अपने स्तन में लगा दिया, अरे तुम्हारी मैया कैसी जो इस पलंग पर रख रखा है, हम तो तुम्हें दूध पिलाएंगे अपने घर में रखेंगे। कुछ ऊपर से कपटता करके माता जैसे भाव प्रकट किए और उसके मुख में जैसे पंप होता है अपने स्तन को लेकर के पंप किया काल की। कृष्ण ने आंख बंद कर ये मैया का वेश बना करके आई और बेटा के का भी कर नहीं, अब इसको क्या करूं। उन्होंने कृपा करके उसके स्तन किया और बोले यदि स्तन पीने से तुम मर गई तो मैं क्या करूं, उसका प्राण भी खींच लिया और उसके इस कपटता भरे हुए असुर के शरीर को राक्षसी के शरीर को छुड़ाकर और उनको क्या किया माता की जैसी गति दे दी बैकुंठ के ऊपर में प्रस्थान। बोलो ऐसा आपके पास कौन होगा जो उनको मारने के लिए कपट वेश धारण करके आया और तभी उसको माता जैसी गति गोलोक में दे, ऐसा कोई दयालु नहीं। और भगवान क्या अवतार रूप दयालु है कि कोई देने नहीं, आप लोग जानते हैं कि तृणावर्त नाम का एक असुर उसी समय में जब छोटे से बालक थे एक महीने के वो हवा का रूप धारण करके आया उनको मारने के लिए। कृष्ण ने सोचा कि बहुत दिनों से आकाश में नहीं उड़ा, जरा उड़ करके जरा भ्रमण तो कर लो, इसलिए उसने क्या किया उनको खूब जोर से आंधी आई अंधकार हो गया सब बालू और धूली सब उड़ने लगी कि कृष्ण इतने भार हो गए कि मैया ने उठा करके यहां पर रख दिया। आस पास में कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार हो गया और उसी समय वो असुर इनको लेकर के यहां रख करके उड़ गया हवा जैसा रूप धारण कर। कृष्ण ने उसके इस गले को पकड़ लिया कुछ इधर उधर भ्रमण करके उड़ करके बोले कि अच्छा ठीक है, उस गले को ऐसे दबाया कि लाल लाल आंखें रसगुल्ले जैसे निकल आए और बोले जो मेरे पकड़ने के इसी गति तू मर जाता है, आंखें निकल जाती हैं और मर जाता तो मैं क्या करूं, मैं तो खेल रहा था तुम लेकर के हमको उड़ गया और वहां से वो गिरा चकना चूर होकर के पत्थर पर गिरा वो मर गया। और कृष्ण जैसे कहते छोटे से कृष्ण बड़े बड़े देवता लोग भी नहीं समझ पाते जैसे ये परमेश्वर भगवान है, ईश्वरों के भी ईश्वर है सर्व कारण का इन असुरों की तो बात तात्पर्य क्या है, लोगों की आंखों में झूल देना कपटता के साथ क्या भगवान कोई नहीं है और भगवान है तो ब्रह्म समय ही शिव है। इन शास्त्रीय युक्तियों को हटाकर कहते भगवान नाम का कोई चीज नहीं, खाओ पियो मौज करो एक ड्रिंक कैन दी गई, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे लोग चुनाव एक सप्ताह को दिया जा रहा गाड़ी में प्रवेश कर गया और कृष्ण को पिचक देना चाहिए, ये क्या चीज है। सारे शास्त्र को जानते हैं वेद शास्त्र सब पढ़े हैं विद्या भी बहुत है किंतु भगवान का भजन नहीं करते सार ग्रहण नहीं करते बहुत शास्त्रों की पोथी को रख रखे हैं किंतु भगवान का भजन नहीं करते नाम नहीं करते, ये सब तकतापूर्ण है ये कपटी धूर्त लोग हैं। भगवान ऐसे लोगों को मार डालते हैं जो वेश बनाया भक्तों का और भजन नहीं करते शिष्य का धन अपहरण करते हैं उसके पापों को और उसके बुराइयों को नहीं हरण करते, ऐसे गुरु जो कपटी होते हैं धूर्त होते हैं भगवान उनका वध अपने हाथों से करते हैं उसको नरक की जन्म करा देते हैं। इसलिए पढ़ना ही और विद्वान होना ही बड़ी बात नहीं है, विद्वान को करके ये समझेंगे कृष्ण ही सब जगत के ईश्वर है और वही सुप्रीम पार्सनालिटी ऑफ गॉड है। यदि ऐसा नहीं करे तो पढ़ना लिखना धन संपत्ति बेकार का है। जब कृष्ण 2.5-3 वर्ष के थे तब घरों को गोपियों के घर में आनंद देने के लिए घरों में घुस जाके टोली के साथ में और घर से मक्खन चुरा लिया, मक्खन नहीं उनका हृदय चुरा लिया, यानी कोटि कोटि वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। ये कृष्ण हमारे घर में आए हमारे लाला हमारा संतान करें, हमारे घर में मक्खन चुराएं, हमको लाड प्यार करें, इसलिए उसको घर में जाए। आप जानते हैं कि दुर्योधन के यहाँ तरह तरह के मेवा पकवान और तरह तरह के सब नहीं देखा, उनके तरफ में गए नहीं। और दुर्योधन के पास में भैया मैया मुझे भूख लगी है और केले के छिलके को दे रही है और उसी को बड़े प्रेम के साथ में आरोप रहे हैं, ये प्रेम देखते हैं, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं, इसलिए मक्खन चुराते नहीं, इनका दिल चुराने के लिए उन लोगों ने ऐसी आराधना की थी, उनके घरों में जाते और उनके घर से मक्खन चुराते। कोई गोपी उनको पकड़ लेती, अरे लाला तू मक्खन चुराता है, अरे मैया मैं कब चुराया, मैं तो समझा जो मेरी मैया का घर है, तू मेरी मैया है और तुम हमको चोर चोर पकड़ रही है, कहा था तुम चुरा देते, और वो भी हंसने लगती, हाथ चुरा करके भाग जाते। कभी कोई एक गोपी और पकड़ लेती, देखिए आज आएगा लाला हम उसे पकड़ लेंगे, उसे पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, अरे मैया तुम मुझको क्यों पकड़ लिया, तो तुम अकेले ही चुरा के पिए रहा है, मक्खन चुरा रहा है, माना क्यों नहीं, अरे मैया मैं थोड़े चुरा रहा था मक्खन, अरे हमारा बछड़ा कहीं तुम्हारे इसी में बर्तन में कूद पड़ा है, तुम्हारे दही के इस भांग में खंडिया है और मैं अपने बछड़े को खोज रहा था, बछड़ा तुम्हारा कैसे कूद गया, उन्होंने देख लीजिए कैसे, बस हाथ लगा करके उसमें से एक मार्ग बस्तर का बछड़ा जो बाबा ने खेलने के लिए व्यथा निकाल, देखो ये हमारा बछड़ा था ये कूद गया, हंसने लगती ये भी हंसने लगते, बस खा लिया, चोरियों के साथ में आते किसी के घर में जाते और वो भी सवेरे में दही मंथन कर रही और उसी के बेटे को कहते जाकर बछड़े को खोल दे, वो बछड़ा खोल देता, बछड़ा रोज पीने लगता और कृष्ण वो जाकर से कहते तुम अपनी मैया से कहा बछड़ा खोल दिया, बछड़ा खुला हुआ है दूध पी जा, वो जाकर के कहा मैया जी ये बछड़ा सारा दूध पी गया, किसी ने खोल दिया, वो दौड़ करके जाकर देखने के लिए उधर बछड़े को और इधर अपनी टोली के साथ में दाम सिदाम सुदाम पशुदाम शोक कृष्ण लवंगा इत्यादि के साथ में भूल जाते और सारे मक्खन टक्खन जितना क्या कुछ उजाड़ करके खाते हुए और हंसते हुए चिल्लोली करते हुए ताली बजाते हुए मैया को दिखा करके खा जाते हैं। इस तरह से तरह तरह से कृष्ण ये नखने का ऐसे किसी गोपी ने उनके हाथ पकड़ लिए, बोले आए तुम को ले चलूंगी और मैया जसोदा के यहां निकलाऊंगी कि तुम्हारा लाला इतना दुष्ट नखट हो गया, इसका शासन करना चाहें तब पीछे बड़ा बड़ा होगा तो कितना भयंकर दर्शन दरायण होगा, आज मैं खुद लेकर उस समय में घोर में उस लाला को गोदी ले लिया और अपने अंचल से घर करके गई, अरे सखी जसोदा मैया जी देख तेरा लाला आज सवेरे उठ करके भोर में ही और हमारे घर में पहुंच गया और किस प्रकार से ये मक्खन चुरा रहा था, आज मैंने पकड़ा है, तू विश्वास नहीं करती, आज तुम तो खुद देखो, जब वो आई तो इसने गोदी से उतार कर दे, जसोदा जी का उसका मुख देखना लगी, ये देखो इसके मुख में और हाथों में दही लगी हुई है, ये थे मेरा बेटा। इतने में देखा क्या कि उसका बेटा उसी का बेटा जो पकड़ करके लाए थे कृष्ण यहाँ पर खाट पर पलंग पर सोए हैं, कृष्ण वहां से उठ करके कहते मैया ही अरे मैं तो सो रहा था, मैं इसके घर में कब गया, और उसने खोल करके देखा जसोदा जी करी अरे ये तो तुम्हारा बेटा हमारा बेटा तो सो रहा था, ऐसी ऐसी मिलाऊ तू झूठ बोल रही है, कृष्ण कहते क्या ये देखो मैया मैं झूठ बोल रही है, मैं तो यहाँ सोया था, अब कल से इसके घर में जरूर जाऊंगा, इस तरह से लीलाएं करती जसोदा जी खुश प्रेम में घर में बैठी बैठी, क्यों ये चोरी करता है, बात तो ठीक है ये चोरी करता है, इसलिए करता है, शायद हमारे घर में मीठा मक्खन नहीं निकलता, हमारी नौकरानी चौकरानी ये सब दही मंथन करती है, मैं नहीं करती, इसलिए शायद ये खट्टा होता होगा, इसलिए पत्रों को खिला देता, आपने नहीं खाता, दूसरों के घर में जाता है, ठीक है, दासियों को भेज दिया और दीपावली के दिन में कहा जी सब लोग जाओ दीप जलाने के लिए और उस दिन अपने हाथों से दूध काढ़ा और निकाल करके सभी आज बनाया अपने हाथों से मीठा है। और भोर में चार बजे ही बेटे को पलंग पर सुला दिया और आकर के दही मंथन कर। यशोदा जी कितनी सुंदरी होंगे आप अनुमान कर सकती हैं, जिनका बेटा जगत में सबसे सुंदर, बस्तर फल चौड़ा, कमर एकदम पतली, माने झुकती है तो सूट में जाए, बहुत ही अद्भुत सुंदर है। सिल्क साड़ी पहनी है, मानो भीतर से उनके अंगों का सौंदर्य झांक रहा हो। और क्या कर रही, परिहानी में मट्टी में दही बहुत, एक एक गाय भी कितना कितना दूध देती है, कितना दूध, बड़ी हड़िया लेकर के चल और एक खंभे में रस्सी लगा दिया और उसको इस तरह घर घर कर दी। उस समय हाथ की चूड़ियां बज रही हैं, मानो करताल मीठा करता, और जो दही से मंथन कर रही है उसे जो शब्द उठ रहा है, मानो मृदंग का पिछड़ा था, धिक्कार, जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनको धिक है, धिक्कार है, धिक्कार है, मानो इस तरह से अब बड़ी सुरीली कंठ से अद्भुत सुरीला अद्भुत परिश्रम से पसीने के बुंदे माने मोती की बुंदे जैसे वो टपक रही हैं, केस खुल गया और केस में जो फूल गुठे हुए हैं माला रुके धीरे 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 वो गिरने लगे और वो तन्मय होकर के क्या कर रही हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई और उसको गान करके तन्मय गा रही हैं। ऐसे ताल पर से सभी मिल करके उनके कंगन भी ऐसे बज रहे हैं, ध्वनि भी उठ रही है, ताल में ताल मिला कर गोविंद दानो
मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई,
और पलन की करने की चेष्टा करते हैं, मैया को बुलाने का जानते हैं, बच्चों के लिए अस्त्र है रोना, रुलाई है आने पर नहीं आने पर भी मैया ही रोने पर मैया आ जाएगी। इसलिए वो उन्होंने परप्रम्भ होकर के उनको भूख लगी है। देखो भाई परप्रम्भ को भूख लगती है, भक्तों को इतनी भूख नहीं लगती। हमारे सुखदेव गोस्वामी को भूख ही नहीं लगती जन्म भर, संत सनातन जी को भूख ही नहीं लगती, वो हवा भी नहीं लेते, जो उन्हें 6 महीने तक देखो कैसे कुछ नहीं खाए। और भगवान को भूख लग गई, हाँ भूख लगती है कैसे, जब भक्तों को ये हृदय में उत्कंठा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूँ और उनको खिलाना चाहती हैं तो उनको भी भूख लग जाती है, नहीं तो भगवान को भूख नहीं लगती। जन्म नहीं है किंतु कोई यदि भक्त चाहता कि हमारा बेटा मजा तो देखेंगे। कृष्ण अजन्म है, अजय है, समस्त भगवानों के भी भगवान है। और आज ये गोकुल में जो सुधा जी के लाला होकर के प्रकट हुए, ये प्रेम थे, ऐसे नहीं और ये रो रहे हैं। यशोदा मैया सुन नहीं रही, बड़ी मुश्किल से पलंग से उतरे पेट के सहारे, जो विश्व ब्रह्मांड को कनिष्ठ मुनि पर धारण कर सकते हैं, पृथ्वी को लेकर के अपने दांतों पर रख करके बड़ा रूप में दौड़ पड़े, गोवर्धन को अपने हाथों में उठाया, फिर निकट को जयनाथ और रावण को मारा सहजी रूप में, और वे पलंग से नहीं उतर पा रहे हैं और रो रहे हैं दूध पीने के लिए मैयारी मैयारी, और मैया सुन नहीं रही। मैया तन्मय होकर के वही गा रहे हैं, गोविंद दामो शरण